तो ये श्लोक वेंकटेश स्तोत्र में आता है, जो वेंकटेश भगवान है बालाजी तिरुपति में, तो वही विष्णु के एक रूप है कृष्ण। तो उनका गुणगान करते समय उनको वेंकटेश के रूप में गुणगान किया जाता है, प्रभु श्री राम के रूप में भी गुणगान किया जाता है, कृष्ण के रूप में भी गुणगान किया जाता है, क्योंकि ये सब एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप है। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। वे विश्व में अलग अलग जगह मेसोपोटामिया, माया, अलग अलग जगह पे इजिप्त, यहाँ पे प्राचीन संस्कृतियां हुई है। पर भौतिक इतिहास जो है, शास्त्रों में एक इतिहास बताया गया है, पर हम पाठशालाओं में इतिहास पढ़ते हैं, तो इस जो भौतिक इतिहास है उसके दृष्टि से भी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। पर जो बाकी सब प्राचीन संस्कृतियां है, जैसे कि इजिप्ट में था, मेसोपोटामिया था, अलग अलग साउथ अमेरिका में था, तो ये जब प्राचीन संस्कृतियां है वो सब उध्वस्त हो गई है। इजिप्ट में शायद आप जानते हैं बड़े बड़े वो उनको उनके जो राजा थे उनके लिए बड़ी कब्र जैसे बनाया गया था, पिरामिड्स उनको कहते हैं, बहुत विशाल वह रचनाएं हैं। पर वो किस लिए बनाए थे और जिन लोगों ने बनाए थे उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं है। अभी अगर जब जाओगे तो अधिकांश रूप से मुसलमान लोग ही हैं। अगर हम माया साउथ अमेरिका में वहां पे जाएंगे तो स्पेन के लोग आए थे, स्पेन के लोगों ने वो जो वहां की प्राचीन संस्कृति सब उध्वस्त कर दी। तो जो भारतीय संस्कृति है वही हजारों सालों से चलती आ रही है, अकेली संस्कृति जो अभी भी चल रही है। पर भारतीय संस्कृति की विशेषता केवल उसकी प्राचीनता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है उसकी आध्यात्मिकता। जो भगवान को केंद्र बनाकर सारा जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह जो उदाहरण है जिस तरह से भारतीय संस्कृति में प्रस्तुत किया गया है वैसे और कहीं भी नहीं है अभी विश्व के इतिहास में। और अभी भी अनेक धर्म हुए हैं, जो भी प्रामाणिक धर्म है उनमें बताया जाता है कि हमें भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम लौटना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अनेक धर्म है, अगर उन धर्मों में ये बताया गया है कि हमारा हमें भगवान से प्रेम करना है और हमारा घर ये भौतिक जगत नहीं है, इसके परे भगवत धाम जाना है, तो वो अच्छे स्तर का धर्म है। इसे प्रभुपाद जी जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इनकी भी सराहना करते थे। तो कहते थे उसमें बताया गया है कि हमें जो इस भौतिक जगत के परे, क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज कहते हैं या कुरान में उसको जन्नत कहा गया है, वहां पे जाना है ऐसे बताया जाता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने जो अचिंत्य भेदाभेद की शिक्षाएं दी है उसमें बताया है कि तीन तत्व है, ये जो तत्व है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ये साधारण समझने के लिए मुश्किल नहीं है, जैसे कि यदि मान लीजिए हमें पुणे से इधर आना था, तो सबसे पहले जो संबंध का मतलब, ये जो संबंध अभिधेय प्रयोजन है, ये तीन चीजें सब कार्यों में उपस्थित होती है। जैसे अगर सबसे पहले भी संबंध जोड़ना है, क्या किससे संबंध जोड़ना है, मुझे आपसे से संबंध जोड़ना है, इसीलिए मुझे यहां पे आना है। तो अगर सबसे पहले हम फैसला करते हैं मुझे क्या चीज करनी है और उसके बाद में वो चीज कैसे करनी है उसके लिए कोई उपाय ढूंढते हैं, तो हम सोचते कार से आएंगे, बस से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, तो फिर हम बस से आ गए, तो वो अभिधेय है। और फिर प्रयोजन मतलब वो कार्य करने से क्या फल मिलता है, तो हमें क्या फल मिलेगा, हम सब जब भगवान के बारे में कथा सुनेंगे तो हम सबके भगवत की प्रगति होगी। और किसी को भूख लगती है तो वो क्या संबंध किससे जोड़ना चाहता है, अन्न से, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो चावल खीरा खा नहीं सकता है, तो उसको अभिधेय क्या है, उसको पकाना पड़ेगा, तो प्रयोजन क्या होगा, पेट भर जाएगा। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये हर एक चीज में आता है। जो आधुनिक समाज है इसमें हमें प्रलोभन दिया जाता है कि अनेक भौतिक चीजों से संबंध जोड़े, जैसे कि हम बस स्टैंड पे उतरे तो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट थे, ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो। तो मैंने एक बार एक कार का एडवर्टाइजमेंट देखा, वो सुंदर कार थी और एक व्यक्ति चला रहा था, उसके उसके साथ एक स्त्री बैठी थी, वो बड़े उसके बड़ी आंखें करके देख रही थी आकर्षण से, और पीछे दूसरा एक व्यक्ति था जिसके आंख चल रहे थे। तो फिर वो एडवर्टाइज क्या लिखा थी, ये परचेज दिस कार एंड एंजॉय द एनवी इन योर नेबर आइज, कि ये कार खरीदो और अपने पड़ोसी जो है उसके आंखों में कैसे ईर्ष्या आती है उसका भोग करो। अभी उसने क्या भोगे वास्तव में किसी को ईर्ष्या से जलाने में क्या आनंद है। तो लोग जो है प्रयोजन जो उनका होता है वो वास्तव में दुख प्रदान करता है, वह वास्तव में बहुत ही नीचे स्तर का है जिससे असली आनंद नहीं मिलता है। तो वहां पे क्या संबंध क्या है, मुझे कार खरीदनी है, कार संबंध जोड़ना है, तो प्रयोजन क्या है, ये पैसा कमाना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा, और फिर जब मैं लोन ले लूंगा तो फिर मैं कार चलाऊंगा, और फिर सब लोग देखेगा किसका कौन है किसके पास कार है, बड़ा आनंद। तो वो क्षण भंगुर आनंद है। शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम संबंध जोड़ेंगे और उससे जो प्रयोजन आएगा उससे कभी हम संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो संबंध कृष्ण अभिधेय भक्ति प्रयोजन प्रेम, यही तीन वाक्य वेद शास्त्र को है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा हम बताते हैं कि हमें संबंध किससे जोड़ना है, कृष्ण भगवान से संबंध जोड़ना है। क्यों भगवान से हमें जोड़ना है, क्योंकि वह संबंध स्थायी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। हम कार खरीदते हैं तो कार कुछ साल के बाद खराब हो जाती है, या हम किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं फिर भी वह संबंध स्थायी नहीं होता है, कि क्योंकि वो व्यक्ति उसका शरीर अविनाशी नहीं है या हमारा भी शरीर अविनाशी नहीं है, तो हमारा संबंध वो काल के प्रभाव से क्षय हो जाएगा। तो संबंध कृष्ण से जोड़ना है, क्योंकि हम आत्मा के साथ शाश्वत है, भगवान के साथ शाश्वत है। वह संबंध जोड़ेंगे तो वह हमेशा के लिए रहेगा। और फिर अभिधेय, अभिधेय मतलब जो पद्धति है वह संबंध जोड़ने की, वह क्या है, वह है भक्ति। भक्ति के द्वारा हम ये संबंध जोड़ सकते हैं। और फिर जो प्रयोजन है, प्रयोजन मतलब उससे क्या प्राप्त होगा हमें, उससे प्रेम प्राप्त होगा। भगवान के साथ प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो हमेशा के लिए हम उनके साथ जी सकते हैं आनंद के साथ। मेरे पास एक पावर पॉइंट है इस टॉपिक पे, कंप्यूटर ला सकते हैं, बैग नहीं है, टेक आउट पावर पॉइंट ऑल्सो। तो संबंध जो है हमें भगवान से जोड़ना है। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर हम ऐसा कोई धर्म है जो बताता है कि हमें भगवान से प्रेम करना है और भगवान के धाम लौटना है, ये दो चीजें यदि बताते हैं तो वो उच्च स्तर का धर्म है। पर दुनिया के अलग अलग धर्मों में भगवान कौन है इसका अधिक वर्णन नहीं है। भगवान से संबंध जोड़ना ये अच्छी बात है, पर वो संबंध कैसे जोड़ना है वह भी पता होना चाहिए, किससे संबंध जोड़ना है। तो अगर हम दुनिया के अलग अलग धर्मों के लोगों से पूछते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या करते हैं, तो इसका कोई वर्णन नहीं है। जब यूरोप में एक बहुत बड़ा चर्च है सिस्टाइन चैपल नाम का, तो वहां पे सिस्टाइन चैपल नाम का जो चर्च है उसमें वहां पे कहां के बड़े विख्यात शिल्पकार थे, माइकलएंजेलो नाम के क्रिश्चियन, आप शायद उनका नाम सुना होगा। तो जो माइकलएंजेलो थे उनको वो चर्च के पादरी ने बताया कि आप इस शिल्प में आप भगवान कैसे लोगों पे कृपा देते हैं उसका चित्रण करो, तो वो करने के लिए तैयार होंगे। दिखाई दे रहा है आपको कि स्पष्ट बंद करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है कि अक्षर आगे आ सकते थे। तो भौतिकवादी लोग थे, भौतिकवाद जो है मटेरियलिज्म, उसमें बताते हैं कि तो भौतिकवादी लोग कहते हैं कि आपको भौतिक चीज से संबंध जोड़ना है, पर वो भौतिक चीज क्षणिक है, तो उससे कोई आनंद नहीं है। फिर कुछ लोग धर्म का भी पालन करते हैं, पर वो धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? वो भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने भौतिक इंद्रियों की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी कुछ एक दिन मैं चेन्नई में गया था, तो चेन्नई में एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, उसका नाम क्या है, वीजा गणेश मंदिर। वीजा गणेश मतलब क्या, कि अमेरिका गणेश जी जो है वो विघ्न का नाश करते हैं। तो मेरे जीवन की क्या तमन्ना है, मुझे अमेरिका जाना है, वो विघ्न जो है नाश कर दो, मुझे वीजा प्रदान कर दो उसके लिए तो यह सब धर्मों में है। अभी क्रिश्चियन धर्म में प्रभुपाद जी बोला करते, उनका जो फेमस प्रेयर है विख्यात कि हे प्रभु, ओ फादर दाउ आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम, गिव अस आवर डेली ब्रेड, कि प्रभु आपके नाम की गुणगान हो, मुझे हमारा रोज का कप अन्न दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसी जो प्रार्थना करते हैं, इससे हमारा, दिस शोज अवर लव फॉर ब्रेड नॉट लव फॉर गॉड, इससे हम भगवान के प्रति प्रेम नहीं दिखता है, ब्रेड के प्रति प्रेम दिखता है। अच्छा है कि भगवान के पास जा रहे हैं, नास्तिक नहीं बन रहे हैं। तो भी अगर आप जानते हैं तो जो मुस्लिम देश है, तो उनमें जो अरेबियन देश है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, वहां पे बहुत सा उसको कहते हैं काला सोना जो तेल है, इसके कारण वो धनवान है। पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये देश है, ये उनमें तेल नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत काफी गरीब है। तो वहां पे उनके जो मुल्ला है, इन सबको क्या प्रलोभन देते हैं कि आपका जीवन जो है अल्लाह के लिए न्यौछावर कर दो, आप सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, आपका शरीर त्याग कर दो, उससे क्या होगा, आपको जन्नत की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर वो जन्नत की प्राप्ति क्या, अगर उनका कुरान पढ़ेंगे, तो मैं कई बार अलग अलग धर्मों के कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूँ, थोड़ा बहुत कुरान बाइबल भी पढ़ा है, और कुरान में देखेंगे तो अभी जन्नत में उनके आकर्षण इतना क्या, अल्लाह से प्रेम हो गया है। वो क्या बताया है, ऐसे उनके मुल्ला बताते हैं, वो श्लोक वहां के जो सूरा है उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके उसका निकाला है कि अगर आपका जीवन अल्लाह के लिए त्याग दोगे तो फिर आप जन्नत चले जाओगे, और जन्नत में हमेशा के लिए 73 कुआरी लड़कियां का आप हमेशा के लिए भोग कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम यहां पे इतने गरीब हैं, यहां पे एक कुआरी लड़की नहीं मिलती, वहां पे 73 लड़कियां मिल जाएगी। तो वो अल्लाह के लिए प्रेम नहीं है, वो लड़कियों के लिए प्रेम फिका जाए। तो ये धर्म का नाम है, पर वो संबंध किसे जोड़ना है, भगवान से संबंध ही जोड़ना है। अभी कुरान में बताया कि 7 स्तर के जन्नत है, और सबसे ऊपर का जन्नत है वो जन्नत है अल्लाह है। तो वो उनको उसकी परवाह नहीं है, उनको सोचा कि मुझे भोग करना है। ऑफकोर्स वो ऐसा से किसी का बात करेंगे तो वो कोई भी जन्नत में जाएंगे, नरक में जाएंगे वो वास्तव में। पर उनका जो भले ही वो धर्म के लिए अपना जीवन त्याग रहे हैं, पर वो संबंध किससे जोड़ रहे हैं, वो केवल अपने इंद्रिय भोग से संबंध जोड़ रहे हैं। धर्म केवल नाम है, और वास्तव में अगर हम सोचते हैं तो भगवान का कुछ वर्णन है ही नहीं। तो भगवान क्या करने वाले हैं, भगवान सिर्फ ये कुंवारी लड़कियों का पोषण करेंगे ताकि जिहादी उनका भोग कर सके? भगवान का कुछ अपना जीवन है या नहीं, इसे कुछ वर्णन है ही नहीं। तो धर्म के नाम पे भी कभी कभी भौतिक लोग क्या करते हैं, वो संबंध भगवान से नहीं जोड़ना है, अपने इंद्रित्व से ही जोड़ना है, और इसलिए वो धर्म का उपयोग कर लेते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य महान आचार्य होते रिलीजियस मटेरियलिस्ट, भौतिक धार्मिकवादी, धार्मिकवादी है वो, पर भौतिक धार्मिकवादी है वो। फिर आजकल तो विज्ञान का युग चल रहा है, तो विज्ञान के युग में अगर आप पूछेंगे कि हमारी सब भावनाएं कहां से आती है, तो अभी जो बोलते हैं कि भावनाएं वास्तव में क्या, हमारे मन में कुछ दिमाग में कुछ रसायन आ जाते, जब रसायन बढ़ जाते तो हमें अलग अलग भावनाएं आती है। तो अभी माँ अपने बेटे को देखती है, छोटा संतान है, तो माँ के हृदय में प्रेम आता है, जो छोटे बच्चे के हृदय में प्रेम आता है, क्यों आता है? बोलते सिर्फ कुछ आपके दिमाग में थोड़े रसायन ज्यादा हो गए, अलग अलग प्रकार के रसायन जब आते हैं तो अलग अलग प्रकार की भावनाएं हो जाती है। तो अभी ये सत्य है, पर ये अपूर्ण सत्य है। कैसे अपूर्ण सत्य है? ये सत्य है कि अगर जब हम आनंदी होते हैं तो कुछ प्रकार के रसायन आते हैं, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कनेक्शन होते हैं ब्रेन में, डेंड्राइट, सिनेप्सिस, वो सब होता है। पर बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्रकार के रसायन जागृत हो जाते हैं और उसके कारण कुछ प्रकार की भावनाएं आती हैं। पर यह अपूर्ण, यह सही है पर यह अपूर्ण है। जैसे कि अगर हम हंसते हैं तो हम, यह आनंद का प्रदर्शन है, पर हंसी और आनंद एक नहीं है। अगर केवल हंसना ही आनंद होता तो फिर हम सब लोग ऐसा मशीन मार देते कि चेहरे को ट्विस्ट कर देना और हंस देने का और सब खुश हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। तो हाँ, वास्तव में जो आनंद है यह एक अंतरंग स्थिति है, और वह बाह्य रूप से कैसे प्रदर्शित होती है, एक स्मित से या हंसी से। तो उसी तरह से जब हम आनंद होते हैं तो शरीर पे उसका प्रभाव होता है, मन पे प्रभाव होता है, तो मन में कुछ भावनाएं जागृत हो जाती है। तो जो विज्ञान है उसको जो भावना व क्या रहस्य पता ही नहीं है। अगर कोई सर्जरी होती है किसी की, या कोई हड्डी टूट गई है तो दर्द होता है, तो अभी पूरे विज्ञान में ऐसा कोई भी मीटर नहीं है जो कितना दर्द हो रहा है ये बता सकता है। वो डॉक्टर बोल सकता है कि आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, पर कोई भी मीटर नहीं है, पेन मीटर है ही नहीं। वो आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं, आपका हार्ट बीट टेस्ट कर सकते हैं, वो आपका टेम्परेचर टेस्ट कर सकते हैं, पर पेन टेस्ट ही नहीं कर सकते। पर एक्चुअली कोई भी अभी डॉक्टर के पास अपना टेम्परेचर चेक कर लिया जाता है, जब दर्द होता है जाता है। तो जो कहने का मतलब क्या है कि अभी डॉक्टर जो है वो ठीक कर सकते हैं दर्द को, पर वो कैसे, वो दर्द क्या है उसको महसूस ही नहीं कर सकते, उसको गण नहीं सकते वो, क्योंकि वो भौतिक वार्ड में दर्द नाम की कोई चीज है ही नहीं। उनका कहना क्या है कि अच्छा, आपके जो पीठ की हड्डी है उसका एंगल ऐसे चाहिए, तो ये ऐसे हो गया है, इसके कारण आपको दर्द हो रहा है। तो वो क्या मेजर कर सकते, आपके पीठ की हड्डी ऐसी हो गई, स्लिप डिस्क अगर किसी को होता है तो, पर उससे क्या दर्द हो रहा है वो कोई मशीन नहीं बता सकता। तो इसीलिए जो भौतिकवादी लोग हैं, जो केवल भौतिकवाद, वैज्ञानिक, एक है धार्मिक भौतिकवाद, एक है वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक भौतिकवाद मतलब वो सोचते कि आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, विज्ञान ही सब कुछ है और ये परमाणु है, ये सब कुछ है, पर ऐसे जो है भावना ही नहीं रहेगी, कि भावनाओं को कोई अर्थ ही नहीं है, कहां से आएगी भावना ये बोल नहीं सकते। तो उसके कारण जो डार्विन था उसने भौतिकवाद को बहुत आगे बढ़ाया अपने उत्क्रांति के अपसिद्धांत से, तो वह खुद बहुत ताश हो गया अपने आगे जीवन में। वह बोला था कि पहले तो मुझे जो संगीत था या कला थी, निसर्ग था, इसमें बहुत रुचि आनंद मिलता था, पर अभी जब सोचता हूं मैं, अगर कोई संगीत सुनता हूं, से वहां पर मोजार्ट, बीथोवेन, ये बहुत विख्यात म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे, तो और देखिए मैं सोचता हूँ ये सब क्या है, केवल वहां उसको ध्वनि, मतलब कोई हवा में कुछ ध्वनि निकल रही है और फिर मैं रसायनों का एक्सर्ट हूं और ये कोई ध्वनि और रसायन का संगम हो रहा है, इसमें क्या आनंद है? तो उसका खुद का जीवन मायूस हो गया। तो इसलिए जो विज्ञान है ये हमें उपयोगी है कुछ चीजों के लिए, पर यह वास्तव में कोई जीवन का अर्थ या आनंद नहीं प्रदान कर सकता है। तो ऐसे एक अमेरिका के बड़े विचारवंत थे मार्टिन लूथर की, उन्होंने कहा कि तंत्र ज्ञान ने क्या किया है, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन। हमने जो मिसाइल है उसको अच्छे से गाइड करते हैं, पर क्या जो व्यक्ति है उनको कोई गाइड नहीं कर सकता है, वो बड़े मिसगाइडेड हो गए हैं। इसका परिणाम कैसे होता है, आपने देखा है फिलिप्स का स्लोगन है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। तो ये विज्ञान है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। पर विज्ञान से वो कभी लोगों को अच्छा नहीं मान सकते, लेट्स मेक पीपल बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि तो कैसे है जैसे अभी आपने देखा है उसमें पे वेइंग मशीन होता है, बड़ा होता है, उसमें आप खड़े रहते हैं और फिर आपका वजन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो छोटा वेइंग मशीन होता है उस पर खड़े रहते हैं। अभी और छोटा वेइंग मशीन आ गया है, वो कैसे होता है एक ईंट जैसे होता है, आप ये बैग भी लेकर सकते हैं आप। और लोग क्या करते हैं बहुत बार खाते हैं, तो खाते खाते फिर खाने के पहले वजन देखते हैं, खाने के बाद देखने वजन देखते कितना बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो देखते रहते हैं। तो उस पर 10 सेकंड के लिए आप खड़े रह जाओ एक पैर पे ही और दिख जाएगा। तो क्या हो रहा है तंत्रज्ञान के कारण, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, चीजों का अच्छा करो। तो जो वजन काटा जो है वो छोटा 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 होते जा रहा है, पर जो लोग वजन कर रहे हैं उससे वो बड़े 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 होते जा रहे हैं। उसके लिए नियंत्रण के लिए विज्ञान के पास कुछ नहीं है। डॉक्टर बोले आपको डायबिटीज हो गए, आप शक्कर मत खाओ, पर वो शक्कर खाने की इच्छा को नियंत्रण करने के लिए विज्ञान में कुछ है ही नहीं वास्तव में। उसके लिए अगर कुछ चाहिए तो वो आध्यात्म में ही है। तो आध्यात्म का जो स्लोगन है वो क्या है, लेट्स मेक पीपल बेटर, लोगों को और अच्छा बना दिए हमें, और लोगों को नहीं सबसे पहले हमको स्वयं को अच्छा बना दिए,
फिर दूसरों को हम देखेंगे।
तो फिर जो यह आध्यात्म जो है, आध्यात्म में हमें भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तो बता रहा था कि कैसे अगर भगवान से संबंध जोड़ना है तो फिर हम संबंध कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए भगवान कौन है ये पता होना चाहिए। तो माइकल एंजेलो जो थे उनको बताया कि आप भगवान के बारे में चित्रण करो, भगवान कैसी कृपा देते हैं। उन्होंने चित्रण किया तो उनके जो कैसे चित्र था कि व्यक्ति जो है वो हाथ ऊपर कर रहा है और भगवान अपने हाथ से उसको उठा रहे हैं। तो उन्होंने व्यक्ति का जो चित्रण किया वो जब वो पुरुष स्त्री का चित्रण करते, डेविड और मैडोना उनका चित्रण करते, सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री, अंदर पुरुष का चित्रण किया। फिर जब भगवान का चित्रण करना था तो फिर वो पूछने लगे पादर से कैसे भगवान चित्रण कैसे करना है। तो फिर उन्होंने सोचा कुछ उनको पता नहीं था, फिर उन्होंने और बड़े पादर के पास, बिशप के पास गए, बिशप से पोप तक गए, सबसे बड़ा चर्च पास उसके लगे, किसी को पता नहीं भगवान का चित्रण कैसे। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान सबसे आदि सबसे पहले थे वो, तो मतलब भगवान बूढ़े होने चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने भगवान का एक वृद्ध व्यक्ति में चित्रण किया है। तो जो चित्र है यही पे है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये उनके संकल्पना है भगवान है, तो ये मानव है और ये भगवान है। तो भगवान अपना हाथ दे रहे और व्यक्ति को उठा रहे। तो अभी अगर आप देखेंगे इसमें, इसमें कौन आकर्षक है, मानव आकर्षक है भगवान आकर्षक व्यक्ति मानव ज्यादा आकर्षक लग रहा है इसमें, तो भगवान की संकल्पना है ही नहीं। सत्य है कि भगवान सबसे पुराने हैं, पर आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, शास्त्र बताते हैं, ब्रह्म संहिता बताते हैं कि भगवान पुराण पुरुष है, पर फिर भी उनपे काल का प्रभाव नहीं होता है, काल का प्रभाव नहीं होता, इसीलिए वे कभी बूढ़े नहीं होते, वे नव यौवनम च। भगवान की सनातन उम्र जो है 15 साल 5 महीने 4.5 दिन है। सनातन समय के लिए भगवान की उतनी उम्र रहती है। तो ये जो है यह भगवान के कृपा है कि भगवान ने सबसे अधिक स्वयं के बारे में जानकारी वैदिक संस्कृति में दी है। तो जो 3 धर्म है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनमें भगवान के प्रति हमें प्रेम करना है बताया गया है, पर भगवान कौन है, उनसे प्रेम कैसे करना है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और इतना ही नहीं कि जानकारी नहीं है, वास्तव में वो जो धर्म है उनमें भगवान के बारे में हम जानकारी प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसे संकल्पना है। वो सोचते हैं कि हम इतने सीमित है, भगवान असीमित है। तो भगवान अगर असीमित है तो हम सीमित जीव भगवान को कैसे समझ सकते हैं। और यही धारणा लेकर वो सोचते हैं कि अगर कहीं भी भगवान के बारे में कोई वर्णन है, भगवान का कोई चित्रण किया गया है, तो वो वास्तव में शैतान का काम है। तो वास्तव में अगर हम जो भक्ति में सीखते हैं कि एक ही भगवान है, अल्लाह, उसको अल्लाह बोले, जिहोवा बोले, क्राइस्ट बोले या कृष्ण बोले, भगवान एक ही है। तो यह वैदिक संस्कृति की महानता है कि अलग अलग धर्मों की संकल्पना है उसको स्वीकार करते हैं, पर बाकी जो धर्म है वो उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आप जानते हैं कोई व्यक्ति क्रिश्चियन मांगे तो प्रसाद नहीं लेते हैं कभी, मुस्लिम भी नहीं लेते हैं, क्रिश्चियन भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको नहीं सोचते कि जो अल्लाह एक भगवान है वही भगवान कृष्ण है। उनका संकल्पना है कि अल्लाह ही इकलौते भगवान है या क्रिस्ट इकलौते भगवान है और बाकी जो तथाकथित भगवान है वो सब शैतान ने रूप लिए है असली भगवान से प्रलोभित करने के लोग। तो इसलिए जब भी आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो जब भी जो मुस्लिम राजा थे कोई भी हिंदू प्रांत को हिंदू देश में जीते थे, पहली चीज जो करते थे वो वहां के मंदिर को उद्ध्वस्त करना, क्योंकि वो सोचते थे कि ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है कि ये झूठे भगवान है उनकी पूजा को बंद करें। तो जो अयोध्या का इकलौता मंदिर नहीं है, हजारों मंदिर है इस तरह से, जिस तरह से इसका उन्होंने विध्वंस किया है। तो ये जो है संकीर्णवाद है। संकीर्णवाद क्यों है? क्योंकि उनके धर्म में भगवान के बारे में वर्णन नहीं है। तो सोचते क्या है कि अभी हर एक धर्म का व्यक्ति सोचेगा कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। तो फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव रूप से व्यवहारिक रूप से बताएंगे, देखो आपके धर्म में भगवान के बारे में वर्णन नहीं है और वैदिक संस्कृति में भगवान के बारे में वर्णन है। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी को भी बता रहे थे कि जो क्राइस्ट है, जो जीसस ने कहा था कहानी कि मैं भगवान हूं, कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान ने मुझे भेजा। तो क्राइस्ट और कृष्णा एक ही व्यक्ति है प्रभुपाद जी बोले। तो फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा कि अगर जीसस जो थे वो कृष्ण के ही पुत्र थे, अगर कृष्ण ने ही भेजा था उनको तो उन्होंने कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बताया? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि उन्होंने जितना बताया उसके लिए आपने उनको मार डाला। तो उन्होंने बताया thou shall not kill and you kill him only first। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, हम अगर आप कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार है, पर आप कृष्ण से बेहतर और कोई भगवान की संकल्पना हमें दिखाओ। अभी हम जानते हैं कि जो षडैश्वर्य पूर्ण बोलते हैं भगवान, तो वह सब धर्म में स्वीकार होगा कि परम राधानाथ महाराज अभी एक नया किताब लिखा है योगा ऑफ लव, तो उसमें एक वो उनका प्रसंग बताते हैं। वो अमेरिका में एक कॉलेज में प्रचार कर रहे थे, जब वो कॉलेज में प्रचार कर रहे थे तो कुछ विद्यार्थी घर बैठे थे और दूसरी जगह थोड़े दूर एक क्रिश्चियन व्यक्ति क्रिश्चियन पादरी कुछ लोगों का प्रचार कर रहा था और वो थोड़ा बहुत ही फंडामेंटलिस्ट था। फंडामेंटलिस्ट मतलब जो बहुत संकीर्णवादी था। वो कहता कि तुम नशा ले रहे हो, तुम नरक में जाओगे। और सब बच्चे हंस रहे थे, उसके मना कर रहे थे, तो चिल्ला रहा था तुम। वो एक लड़का और लड़के हाथ में लेके खड़े थे, तुम अवैध सहन कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। और इस तरह से लड़का मुझे और मजा करेगा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे महाराज साकरण में थे, तो वो देखो वहां पे एक पेगन है। वो जैसे वो क्या कहते हैं जो क्रिश्चियन धर्म का पालन नहीं करता उनको वो कहते हैं पेगन, शब्द इस्तेमाल करते। वो पेगन वहां पे है, उसको क्या होगा? वो तो हमेशा अगले नरक में जाएगा, झूठे धर्म का पालन कर रहा है, नखेड़ पालन कर रहा है, झूठे धर्म का प्रचार कर रहा है। तो मेरे बच्चे ने उसको और उकसा दिया, प्रयास किया, तुम्हारी हिम्मत है क्या उसके सामने उसके मुंह पे बोलो तुम नरक में जाओगे? हाँ क्यों नहीं, चलो। तो आ गया। तो वो आके पेगन तुम नरक में जाने वाले। तो आप विद्यार्थी हो, सबको मजा आता है देखते हुए, संघर्ष होने वाला है। तो सब आ गए, तो महाराज शांत रह गए, कुछ बोले। तो मैं क्यों नरक में जाऊंगा? क्योंकि तुम झूठे भगवान की पूजा कर रहे हो। भारत तुम कहां जाओगे? मैं स्वर्ग में जाऊंगा। उसका आश्चर्य होगा पहले, वो कुछ बोल सोचा था कि कुछ प्रतिकार करके तो कैसे स्वर्ग में जाऊंगा बोले। अगर तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हारे जैसे गर्वित व्यक्ति के साथ हमेशा रहने से बेहतर है कि मैं नरक में चला जाऊं। इट इज बेटर देन स्टेइंग विद एन अरोगेंट पर्सन लाइक यू फॉर रेस्ट ऑफ इटर्निटी। आई वुड प्रेफर गोइंग टू हेल।
तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो सब लड़के तालियां बजाने लग गए। तो वो क्रोध हो गया वो,
पर कुछ बोल नहीं पाया। और फिर महाराज ने कहा कि तुम जिस भगवान की पूजा करते हो क्या वो शक्तिशाली है? हाँ बेशक सर्वशक्तिशाली है वो। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो क्या वो सुंदर है? हाँ सर्व सुंदर है वो। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो क्या वो बुद्धिमान है? हाँ वो परम बुद्धिमान है। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो क्या वो यश संपन्न है? बिल्कुल यश संपन्न है। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो क्या वो बलवान है? हाँ बिल्कुल बलवान है, धनवान है, बलवान है। फिर क्या तुम जिस भगवान की पूजा करते हो आ सकता है या आ सकता है? भगवान बिल्कुल आ सकता है। तो जो भगवान सर्वगुण संपन्न है, सर्वेश्वर संपन्न है, उसी भगवान की मैं भी पूजा करता हूँ। तो तुम्हारे भगवान का जो नाम है वह नाम है कृष्ण, तुम भी कृष्ण की ही पूजा करते हो क्योंकि तो कृष्ण छह गुणों से संपन्न है। तो ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। और फिर महाराज ने उसको समझाया कैसे कि जो कृष्ण ये संकल्पना है ये कोई संकीर्ण संकल्पना नहीं है, कोई ये हिंदू देवता नहीं है। ये जो भगवान की जैसे अगर कोई महान व्यक्ति बोल देगा कि अभी कोई व्यक्ति आता है रूम में बोलता मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, तो किस तरह बोल सकते आप प्रधानमंत्री? अभी ये ओबामा आए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके सिक्योरिटी के लिए भारत ने 300 करोड़ रुपए खर्च किया, 3 दिन आए थे। तो फिर इतने सारे गार्ड होते हैं उनके साथ में, इतना सिक्योरिटी होता है। तो जो लक्षण होते हैं एक राष्ट्रपति के उसके अनुसार चलता है कि वो राष्ट्रपति है। तो ऐसे नहीं है कि मैं बोलूं अभी ये राष्ट्रपति है, आप बोलोगे राष्ट्रपति, देख रहे हैं कि लक्षण है कि नहीं। उसी तरह से भगवान के लक्षण होते हैं, अगर भगवान के लक्षण है तो वो भगवान है, अगर भगवान के लक्षण नहीं है तो वो भगवान नहीं है। तो इसलिए जो लक्षण है ये सब धर्मों को स्वीकार है कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, सर्व धनवान है, सर्व गुणवान है। तो ये जो सदैश्वरी है ये सब धर्म कहते हैं कि ये भगवान में है, पर ऐसे व्यक्ति कौन है इसका वर्णन नहीं है उन धर्मों में। तो जो व्यक्ति है तो प्रभु बोलते हैं ये भगवान के गुण है, ये आपको स्वीकार है क्या? आपके भगवान में भी ये गुण है? हाँ ये है। तो ऐसा गुण संपन्न व्यक्ति कौन है? तो आपके धर्म में नहीं बताया गया, तो वैदिक शास्त्र में बताया गया ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति है ये उसकी गुण है, और ये व्यक्ति है जिसके पास ऐसे गुण है। तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये जो गुण संपन्न व्यक्ति है वही भगवान है, भगवान के ये गुण होने चाहिए और ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये गुण है इसीलिए ये भगवान है। तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव है। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर आप कृष्ण से ऊंची और कोई भगवान की संकल्पना है बता सकते हैं तो हम कृष्ण को त्याग देंगे और उसकी पूजा करने लगेंगे, पर ऐसी कोई संकल्पना है ही नहीं। तो भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ खुद की जो रेवलेशन, खुद के बारे में जानकारी जो दी है वो वैदिक शास्त्रों में दी है। तो ये हमारे लिए गर्व की कोई बात नहीं है, वास्तव में ये भगवान की हम पे कृपा है। तो ऐसे नहीं है कि हम हिंदू है, हमारा हिंदू परिवार जाते हैं इसलिए हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, मुस्लिम लोगों के मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये किस धर्म में सबसे अधिक ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार। जैसे अभी भारत में कुछ लोग कहते हैं कि कई बार भक्तों को भी कंफ्यूजन होता है ऐसे कि इतने सारे अलग अलग मार्ग हैं तो कौन सा मार्ग सही है। अभी हम तो समझ गए हैं थोड़ा बहुत, पर फिर बाहर के लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। थोड़ा तो संकीर्णवाद जो होता है एक्सक्लूसिविज्म, मतलब क्या, मेरा ही मार्ग असली मार्ग है, अगर तुम मेरे मार्ग का पालन करोगे तो ही तुम भगवत जान जाओगे, अगर मेरे मार्ग का पालन नहीं करोगे तो तुम हमेशा के लिए नरक में जाने वाले हो। तो मेरा मार्ग ही असली मार्ग है और इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं इंग्लिश में एक्सक्लूसिविज्म। और फिर दूसरे क्या है, नहीं हम इतना संकीर्णवादी नहीं बनेंगे, हम बड़े विशाल दिल के बनेंगे। क्या है, सब मार्ग सही है, आप जो मार्ग पालन कर रहे हो वह सही है, कोई समस्या नहीं। अगर हम इतने विशाल दिल वाले बन जाएंगे, सब एक दूसरे के मार्ग को मानेंगे, तो फिर क्या होगा? कोई संघर्ष नहीं होगा, सब सुख से रहेंगे। ऐसे लोग होते हैं। तो ये दो ऐसे हम जाते हैं कि पहले से घड़ी होती थी, उसके काटा होता है, घूमती है, तो इस साइड में एक्सट्रीम में जाएगी, छोड़ देंगे तो इधर आ जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर से छोड़ देंगे तो इधर चली जाएगी। तो उसका जो स्टेडी स्थिर जगह कौन सी है? बीच वाली है। तो एक जो एक्सट्रीम है वो है कि मेरा ये अकेला मार्ग सही है, दूसरा एक्सट्रीम है कि सब मार्ग सही है। तो ये जो दो विकृत विचारधारा है उनके बीच में स्थिर विचारधारा क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। पर इसके पहले हम समझे कि अगर कोई कहता है कि मेरा ही मार्ग सही मार्ग है, तो हम इसका प्रतिकार कैसे कर सकते हैं? कृष्ण कहेगा मेरा ही मार्ग सही है, मुस्लिम कहेगा मेरा ही मार्ग सही है। तो ये जो है ना, तो अधिकांश रूप से क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म जो है वह इस विचारधारा से हमारा ही मार्ग सही है, और जो हिंदू धर्म है वो कहते हैं कि सब मार्ग सही है। हिंदू ऐसे ये तो मत तो पथ कहते हैं, पर वास्तव में दोनों विकृत हैं। अगर कोई कहता है कि मेरा ही मार्ग सही है, तो फिर वो क्या कर रहा है? भगवान को लिमिट कर रहा है। मतलब भगवान इतने विशाल है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग क्यों होना चाहिए? तो भगवान क्या केवल किसी व्यक्ति की संपत्ति है कि उसके बिना कोई व्यक्ति भगवान के पास जा नहीं सकता? ऐसे नहीं है। तो कैसे कि भगवान का जो धर्म है उसे भगवान, हमें भगवान का ज्ञान मिलना है और भगवान से प्रेम जागरूक करना है, दो चीजें होनी है। तो भगवान का ज्ञान मिलना है मतलब कैसे कि एक शैक्षणिक संस्था है धर्म है, से अभी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग का ज्ञान मिलना चाहिए। अगर वो ज्ञान मिलता है तो वो कॉलेज अच्छा है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा कॉलेज ही दुनिया का इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज है, और अगर तुम मेरे कॉलेज से डिग्री नहीं प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे इंजीनियरिंग डिग्री बोगस है, तो ये क्या है? संकीर्णवाद है। हाँ, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, हम संकीर्णवादी नहीं बनेंगे, इस दुनिया में जितनी इमारतें हैं वो सब इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये तो और मूर्खता है। तो वास्तव में हम कैसे समझते हैं कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है? वहां हमें देखना चाहिए उसमें कितना इंजीनियरिंग का ज्ञान मिल रहा है। और अभी अभी आप जब इंजीनियरिंग में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तब अलग अलग चरण होते हैं। आप देखते इस कॉलेज में आ सकते, तो पहले तो फिर इस कॉलेज में जाएंगे, तो इस कॉलेज में जाएंगे, तो सब कॉलेज के रैंकिंग होते हैं। पर ये रैंकिंग किसी एक व्यक्ति के अपने मनोगणित संकल्पनाओं से नहीं है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ दर्ज स्तर है माप करने के लिए, गणने के लिए। अच्छा, उसका कैंपस कितना आता है, उसके टीचर कैसे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कैसी है, स्टेइंग रहने के लिए हॉस्टल कैसा है, ये सब क्या गणन करके फिर कहते हैं कि ये कॉलेज इस लेवल पे है, ये कॉलेज इस लेवल पे है। तो उस तरह से जो गणन करने के लिए धर्म का हमें क्या देखना चाहिए कि भगवान के बारे में कितना ज्ञान दे रहे हैं। तो हम क्या, हम शुरुआत के प्रवचन में कैसे संबंध अभिधेय और प्रयोजन चर्चा कर रहे थे, तो भगवान के बारे में कितना ज्ञान है, भगवान संबंध जोड़ने के लिए कितने हमें जानकारी या पद्धति दी गई है, और फिर जो फल है वो कैसे प्राप्त होता है, ये तीन हम अभी तुलना कर रहे हैं वैदिक धर्म में और अलग धर्म में। तो अभी इस तरह हम संबंध ज्ञान की तुलना कर रहे हैं। तो वैदिक शास्त्रों का क्या कहना है कि ऐसे नहीं है कि एक ही पाठ सही है या सब पाठ सही, एक ही मार्ग सही है या सब मार्ग सही है। वास्तव में एक ही मार्ग है और उस पर अलग अलग स्तर है। तो इस चार स्तर है इस मार्ग भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, भगवत उस चार स्तर है। क्या चार स्तर है? ये भय, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। तो ये चार स्तर है, इनमें आप सब इसके बारे में आपने सुना है, मैं इसे ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा अभी। पर अलग अलग धर्मों में ये प्रेम के बारे में बताया गया है कि हमें भगवान से प्रेम करना है, पर अधिकांश जो धर्म के लोग हैं वो भय और इच्छा इनके स्तर पे ही रहते हैं। कि प्रेम अगर करना है तो व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर जानकारी नहीं है तो फिर वो व्यक्ति से प्रेम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए भगवान के बारे में जितनी अधिक जानकारी है उतना उनसे प्रेम करना आसान हो जाता है। और वैदिक शास्त्र में इतने भगवान की लीलाएं बताए गए, इतने गुण बताए गए, इतने कार्य बताए गए हैं कि भगवान के प्रति आकर्षण स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। पर इसमें भी एक चीज जरूरी है कि केवल भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। हो सकता है पर होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले क्या है? संबंध। संबंध मतलब कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और हमसे हमारा क्या संबंध है। तो भारत में मायावादी लोग होते हैं जो निर्विशेषवादी लोग होते थे कि वास्तव में जीव शिव एक है। वो कहते हैं हम सबको भगवान से एक बन जाना है। पर फिर अगर ऐसे कोई धारणा होगी तो उससे सवाल आता है कि हम भगवान से अलग हुए कैसे, क्योंकि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान को अपने अंग से या अपने अंश से अलग करने वाली शक्ति कौन सी थी? नहीं, भगवान ने खुद को माया में डाल दिया। तो ठीक है, अगर भगवान ने खुद को माया में डाल, माया आई कहां से? वास्तव में माया है नहीं। फिर माया है तो माया में कैसे है? वास्तव में हम माया में नहीं है, तो हम सिर्फ कल्पना कर रहे माया में। पर अगर हम भ्रम भी में पड़े हैं कि मैं माया में हूं, ये भ्रम आया कहां से? तो अगर आप सवाल पूछे तो निर्विशेषवादी लोगों के पास ज्यादा जवाब नहीं है। तो उनकी क्या, उनका भय क्या होता है, क्यों निर्विशेषवाद की ओर लोग जाते हैं? क्या होता है, भौतिक जगत में हम जो भी संबंध जोड़ते हैं वो संबंध से क्या होता है, हमको निराशा मिलती है, उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं ये छोड़ा रहा था, मेरे पिताजी कहानी बताते हैं, छोटी सी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो वास्तव में यही सबकी कहानी, उसके बीच में कुछ भी हो जाए बाद में क्या होने वाला है, बाद में दोनों की मुक्ति होने वाली। तो इस दुनिया में हम जितने संबंध जोड़ते हैं और जितनी तीव्रता संबंध जोड़ते हैं उतना हमको दुख मिलता है। तो उसके कारण कि जब ये कुछ लोग जो होते हैं ऐसे संबंधों से हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं संबंध की जरूरत ही नहीं है, संबंध से ही दुख मिलता है, संबंध से ही बंधन होता है, तो संबंध को त्याग। और फिर जब उनको बोलते हैं कि आपको भगवत, आप जब आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आपको भगवान से संबंध जोड़ना है, तो डर जाते हैं, कोई संबंध नहीं जोड़ना है, किसी से संबंध नहीं चाहिए हमको। तो सिर्फ भगवान चौथे अध्याय के दसवें श्लोक में बताते हैं, वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। वीत राग भय क्रोध, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए तीन व्यत्यय आते हैं। सबसे पहला व्यत्यय वीत मतलब इन तीनों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। राग मतलब आसक्ति, ये भौतिक जगत से आसक्ति रहेगी, फिर भगवान है या नहीं है। कई बार लोग कहते हैं यहां भगवान है, वो वहां पे खुश है, मैं यहां पे खुश हूं, उनको वहां पे रहो, मैं यहां पे रहूंगा। पर समस्या है कि वो वहां पे खुश है पर हम यहां पे आया समय खुश नहीं रह सकते, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी, उसके पहले ही आध्यात्मिक आदि होते आएगी, सब क्लेश आते रहते हैं। तो इसीलिए जो है राग बहुत ही जगह से अगर बहुत आसक्ति होगी तो फिर हम भगवान से संबंध जोड़ने की प्रेरणा नहीं मिलती। फिर भय, ये भौतिकवादी लोगों में राग है और फिर जो मायावादी है निर्विशवादी लोग उनमें भय है। किसका भय है? कि अगर वहां पर भी संबंध जोड़ना है तो यहां पर संबंध जोड़ते तो क्या होता है, कभी कुछ गलत कहने आ जाती है, कभी कुछ झगड़ा हो जाता है, और फिर जिस संबंध इतना सुख मिला है उतना ज्यादा दुख मिलता है। ऐसे एक मैं अभी एक कहावत है, इट इज ईजियर टू फॉरगिव एन एनिमी देन टू फॉरगिव अ फ्रेंड, कि एक शत्रु को माफ करना बड़ा आसान हो जाए पर मित्र को माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मित्र से हमारी अपेक्षाएं बहुत होती है, शत्रु से क्या अपेक्षा है, कुछ नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करने वाला है, तो फिर उससे अपेक्षा ज्यादा नहीं होती है। जितना हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं उतना उससे हमको दुख भी मिल सकता है। तो इसीलिए लोगों से हमको संबंध नहीं चाहिए। वीत राग भय, और फिर तीसरा है क्रोध। क्रोध मतलब क्या, कि लोग होते हैं कि ये मार्ग, ये लोग ये कहते हैं, ये लोग वो कहते हैं, ये लोग वो कहते हैं, क्या सत्य पता नहीं, छोड़ दो सबको, मैं झंझट में पड़ूंगा ही नहीं। पर वो झंझट में नहीं पड़े गए तो भी भौतिक जगत ही एक झंझट है, वो झंझट छूटने वाले नहीं है।
लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग के झंझट है, मैं उसमें नहीं पड़ता हूँ,
पर भौतिक मार्ग भौतिक जगत की एक झंझट ही है, बहुत बड़ा झंझट है। तो इस भौतिक जगत से कुछ छुटकारा नहीं है हमें, देयर इज नो इजी वे आउट, कोई सरल मार्ग नहीं है हमारे पास। तो इसलिए जो भक्त है वो इन तीनों चीजों से मुक्त होता है, वीत राग भय क्रोध मन मया माम पाशित। भगवान कहते हैं कि इस तरह से इन तीन चीजों से मुक्त होके अब आपका मन मुझ में लगाओ और मेरा आश्रय ग्रहण करो। और फिर ऐसा जो भव ज्ञान तपसा, ऐसा बहुत लोगों ने किया है पहले, और पूर्णता मद्भाव आगत और वो शुद्ध होकर मेरे धाम को प्राप्त कर चुके हैं पहले ही। तो भगवान से संबंध यदि हमें जोड़ना है तो हमें राग भय और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। और जब राग भय और क्रोध से मुक्त होते हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो फिर भगवान के अनेक लीलाएं हैं और भगवान की इतनी मधुरता है, इतनी महिमा है कि उससे हम साधारण रूप से आकर्षित हो सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि केवल भगवान के बारे में जानकारी से हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते, जानकारी के साथ हमें उनके प्रति भक्ति चाहिए। भक्ति संजायते भक्ति, भागवत में बताया गया है कि भक्ति कैसे जागृत होती है। भक्ति केवल किसी भक्त के संग, जिसके हृदय में भक्ति है उससे ही भक्ति जागृत होती है। शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में जो अग्नि है वो सुप्त रूप में है, पर वो अग्नि तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कोई और लकड़ी इसमें अग्नि प्रकट नहीं हुई है, उसकी संकर्प में संपर्क में ना आ जाए। तो भगवान हमारे हृदय में ही लुप्त है, पर तब तक हमारे हमें उनका उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होगी जब तक कोई और भक्त जिसको भगवान की उपस्थिति महसूस हो रही है, जिसकी भक्ति है, वह आके हमारे हृदय को संपर्क करे। इसलिए हम देखते हैं कि हम सब, खासकर भारत में तो हम सब कृष्ण राम इनके बारे में जानते थे, बचपन से जानते थे, पर हमने कभी गंभीरता से उनकी भक्ति करने का विचार नहीं किया। आपने से इसमें किया होगा तो आप भाग्यवान है, मेरा तो भाग्य नहीं था इतना। पर कैसे फिर भाग्य हुआ हो, भक्तों का संग मिला। और भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने जरूर हमको जानकारी दी, वैसे भगवान की अधिकांश लीलाएं तो हमको पता थी, पर क्या होता है अगर भगवान के बारे में तत्व ज्ञान हमें पता नहीं है तो फिर भगवान की जो लीलाएं है वो केवल मनोरंजन बन जाती है, मनोरंजन हो जाता है उससे और कुछ नहीं होता है उससे। तो आजकल टीवी पर चलते रहता है, टीवी कोई जय वीर हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, सारे चलते रहते हैं और लोग देखते हैं। और वो एक समय कुछ काली माता के बारे में देख रहे होंगे और फिर वो चैनल चेंज करेंगे और फिर कोई मूवी स्टार के बारे में देखने लग जाएंगे। तो केवल मनोरंजन है, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए संबंध जो है उसके लिए, संबंध के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान क्या है, भगवान दो प्रकार का ज्ञान है, भगवान की महिमा और भगवान की मधुरता, ये दोनों का ज्ञान है, गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स स्वीटनेस। इन दोनों का जब ज्ञान होगा तो फिर उसके द्वारा हम भगवान की ओर आकर्षित रहते हैं। तो भगवान के सिर्फ मधुरता के बारे में पता है और महिमा के बारे में पता नहीं है तो फिर क्या होता है, भगवान की ओर एक मनोरंजन का कार्य बन जाते हैं। तो कोई बहुत से भारतीय लोग हैं वो भगवान कृष्ण के नटखट बालक के रूप में गीते गाते हैं और लोहरिया गाते हैं, पर वो भगवान, ये वास्तव में भगवान है ये समझते नहीं है। तो ठीक उस तरह से अगर सिर्फ भगवान की महिमा पता है पर भगवान की मधुरता नहीं पता है तो फिर उसके लिए सिर्फ डर उत्पन्न होता है, उससे प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। भगवान के इतने महान है भगवान, तो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अभी आसमान भी बहुत महान है पर आसमान से प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि आसमान में महिमा है पर मधुरता नहीं। तो जब महिमा और मधुरता दोनों का संगम होता है तो फिर उससे प्रेम जागरूक होता है। तो महिमा से हमें भगवान का ऐसे पता है कि हमें भगवान का प्रणाम करना चाहिए, भगवान कितने महान है पता चलता है। तो उनके मधुरता से उनके प्रति हमें भावनाएं प्रेम अर्पण करते हैं। तो इस तरह से जो संबंध ज्ञान है विस्तारित रूप से हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया है। So then now, till what time should I go on? Even the same devotees will be there or different?
Different.
अच्छा।
Five minutes.
Okay. ठीक है. So evening I'll continue the topic. I'll take a different topic. Different topic. No? Okay. Okay. So I'll try to complete this. It's a big topic. But जो है भगवान का जो विशेष वर्णन जो है, जैसे यहाँ पे अभी प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में बताया है, तो जब कैके इशारा षड्यंत्र करती है और प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास से भेज देती है, तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र कैके के प्रति बिल्कुल क्रोधित नहीं होते. जब दशरथ के कमरे में उनको बुलाया जाता है और दशरथ महाराज लगभग बेहोश होते हैं, वो कुछ बोलने को बोलने की शक्ति नहीं रहती उनको, फिर भी कई बड़ी निष्ठुरता से बोलती है. उसे आगे तो पूछते हैं कि मेरे पिता को क्या, पिताजी को क्या हुआ है, पिताश्री को क्या क्या उनको दुख का कारण है, कौन उनके दुख का कारण है. तो बड़ी निष्ठुरता से कैके बोलती है तुम. तो फिर उसे क्या हुआ माताश्री, कि वो तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं और डर लगता है कि तुम क्या प्रतिक्रिया करोगे. बोले उनका जो आदेश है वो जरूर पालन करूंगा. और फिर वो बताती है सब कुछ. प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं मैंने आज तक बोला था कि आपने, मैंने आज तक आपको मेरी माँ के समान ही माना था और मैंने सोचा था कि आप भी अपने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हो, पर आज मुझे पता चला कि आपने मुझे कभी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया. अगर आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती तो तुम खुद ही मुझे आदेश देती, तो आपके आदेश के पालन करने के लिए एक राज्य क्या है, मैं अपनी जान भी त्याग करने तैयार हूं. आपको पिताजी को इतना परेशान करने की जरूरत ही क्या थी.
तो प्रभु श्री रामचंद्र
तो बिल्कुल आ सकते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं. फिर भी कह कहकर बिल्कुल हृदय निष्ठुर हो गया होता है. शास्त्र बताते हैं, रामायण वाल्मीकि बताते हैं कि कैसे कहके वॉज काइंड जेंटल एंड इंटेलिजेंट, बट शी बिकेम क्रूएल हार्श एंड फूलिश. पूरे उसके जो गुण थे पूरे विकृत हो गए. काइंड मतलब उसका हृदय अच्छा था, जेंटल मतलब बोलने में मधुर थी और बुद्धिमान थी, पर वो मूर्ख कठोर वचनों वाली और कठोर हृदय वाली बनी. कहते दुस्संग के कारण, मंत्रा के संग के कारण. पर उसके बाद में जब प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता को बोल के फिर जाने के लिए आ गए वापस दशरथ महाराज के महल में, तभी क्या हुआ, तभी दशरथ महाराज बोले कि हे राम तुम जंगल में जा रहे हो, मैं भी जंगल में आऊंगा तुम्हारे साथ और हम सारे अयोध्या का राजेश्वर जंगल में ले जाएंगे और सारे अयोध्यावासी भी आ जाएंगे, तो हम जंगल को अयोध्या बना देंगे और ये कैके अयोध्या रूपी जंगल में अपने पुत्र के साथ रह सकती है. तो ये सुनकर कैके बहुत खुश हो जाती है. बोले तुमने मुझे सारा राज्य बोला, देने का वचन दिया था, एक जंगल का वचन नहीं दिया था. राम केवल अकेला जाएगा और कोई नहीं जाएगा उसके साथ, और उसको ये राज वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है. और जंगल में जाएगा तो जंगल में जो ऋषि मुनि रहते हैं ऐसा वेश पहनना चाहिए, और वो वेश लेके आ गई होती है वहां पे. और फिर वो पहनाती है सीता माता को, कैसे पहनना पता नहीं होता. तो श्री राम और लक्ष्मण उसके पहले दशरथ महाराज के आदेश के अनुसार विश्वामित्र के साथ जा चुके हैं, तो उनको पता है त्रिभाग कैसे पहनना है. तो सीता माता पहनती है फिर वो, और यह देखकर दशरथ महाराज बहुत गौर होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमने वचन दिया था इसीलिए मैं वचनबद्ध हूं, पर तुम्हारी निष्ठुरता देखकर मैं हमेशा के लिए मेरा तुमसे संबंध तोड़ देता हूं. आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो और मैं तुम्हारा पति नहीं, हमारा कोई भी संबंध नहीं है आज से. और फिर इस तरह से वो बोल के बेहोश हो जाते और कहके बिल्कुल निष्ठुर रहती है. और फिर जब भरत आते हैं, भरत को पता चलता है कि ये सब हुआ है, भरत भी बहुत क्रोध हो जाते हैं. और फिर उसके बाद में वो 14 साल से बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बाकी आचार्य बताया है कि 14 साल भरत जो है कैकेयी को कभी मां के नाम से नहीं बोलता है, वो कैकेयी को महारानी कैकेयी बोलता है. तो क्यों, ओ कैकेयी एक बार बोले मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझे महारानी कैकेयी क्यों बोल रहे हो. तो भरत बोलता है कि मेरी माँ तो प्रेम की नदी के समान थी, मेरी माँ को महारानी कैकेयी ने मार डाला है।
अभी जो बच्ची है वो केवल महारानी कैकेयी है। फिर
तो प्रभु श्री रामचंद्र जब भरत से मिलते हैं तो वो जो संवाद है वो बहुत ही मधुर संवाद है। तो भरत जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है और प्रभु श्री रामचंद्र है ये कर्तव्य की पराकाष्ठा है। तो कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष है, बहुत सुंदर है। लगभग कई बार से वाद विवाद होते रहता है और अंत में भरत बोलते हैं कि मैं अगर आप राज्य स्वीकार करने नहीं आओगे वापस तो मैं यहां पे उपोषण पे बैठकर प्रायव्रत लेकर अपना शरीर त्याग दूंगा। तो फिर प्रोग्राम से बहुत गंभीर हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हे भरत, तुम्हारे प्रेम ने मुझे हरा दिया, तुम मुझे राज्य अर्पण करने आए थे, मैं राज्य स्वीकार करता हूं। और सब अयोध्यावासी बड़े आनंद हो जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, रुको बोलते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का जो वचन था वो गलत साबित ना हो, इसीलिए हे भरत तुमने मुझे राज्य दिया है वो मैं स्वीकार करता हूं और मेरी ओर से ये राज्य मैं तुम्हें 14 साल के लिए अर्पण करता हूं।
तो अभी भरत कुछ बोल नहीं पाते,
पर जब भरत जा रहे होते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र भरत को बोलते हैं कि कैकेयी को आप दोषी मत मानो, ये सब नियति है, ये सब दैव की इच्छा है, इसीलिए हुआ है। तो कैकेयी को आप कैकेयी के साथ आप दुर्व्यवहार मत करो। और फिर बाद में जब रावण का वध होता है तभी सारे स्वर्ग से देवता आते हैं, तो दशरथ महाराज वहां प्रकट होते हैं। तो दशरथ महाराज प्रकट होते हैं तो वो प्रभु श्री रामचंद्र से बहुत प्रसन्न है, वो कहते हैं कि आपने मेरे वचन को सत्य साबित किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और आलिंगन करते रहूंगा। और फिर वो लक्ष्मण को बोलते हैं जैसे तुमने अभी तक सेवा की है अपने बड़े भाई की, इसी तरह से सेवा करते रहो। और फिर वो रामचंद्र से कुछ राम से बोलते तुम कुछ मांगो मुझसे, मतलब बहुत प्रसन्न हो मुझे। तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र क्या मांगते हैं, ये कहते हैं कि जब मेरा मैं वनवास में जा रहा था तो आपने मां कैकेयी को ठुकरा दिया था, तो उनको आप माफ करके पुनः स्वीकार कर लीजिए। तो ये भगवान का भाव है, और जिसके कारण उनको वनवास जाना पड़ा, उसके कारण इतना सारा समस्या है उनको, वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम किसी छोटी सी गलती की तो हम उससे बदला लेना चाहते हैं। तो बहुत बदला नहीं रहते, कोई और व्यक्ति उनपे बोलते आप भी उनको माफ कर दो। और फिर 14 साल कभी भरत जो है कैकेयी के महल में नहीं जाता है। तो अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस आ जाते हैं तो भरत उनको स्वागत करने आता है, वो बहुत सुंदर जगह है नंदीग्राम नाम की अयोध्या के बाहर, जहां पे पुष्पक वाहन उतरता है। फिर वो पुष्प वाहन देखते हैं तो वहीं से भरत महाराज उनकी आरती करने लग जाते हैं और फिर बड़े आनंद से अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो फिर वो कैकेयी से मिलने कैकेयी के महल में जाते हैं तो वो देखते भरत नहीं है, भरत कहां है, और सारे राजदरबार के लोगों पूछते, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। फिर भरत कहां है, शत्रुघ्न बोलते भरत यहां पे नहीं आता है। तो भगवान हंसते हैं, फिर बाहर जाते हैं, भरत बाहर खड़ा भरत खींच के लेकर आते, नहीं भैया बोलते नहीं, और आंखें कहकर तुम्हारी माँ है। और फिर उन दोनों अपना मिलन कराते हैं। तो ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है कि अनिमिषो निमिष स्वाग्री वाचस्पति रुदारधी, अनिमिष निमिष स्वाग्री, अनिमिष मतलब जो व्यक्ति कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते, निमिष मतलब जो आंखें बंद करते हैं। तो भगवान ऐसे है कि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है भगवान आंखें बंद कर देते हैं और देखते नहीं है, और कोई छोटी सी सेवा करता है तो आंखें बड़ा खोल के देखते हैं, तो मैंने सेवा कर रहा है। तो हम बहुत ही जगत में कोई कंपनी में काम करते हैं तो तभी भी हमारा बॉस अनिमिष निमिष होता है। कोई आप मान लीजिए सबमिशन करते हैं
सौ तो ये सबमिशन करो आप, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं बोलेंगे, एक जगह गलती देखिए बड़ा क्रॉस कर देते तो इसलिए कुलशेखर महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो लोग हैं वो पुरुषाधम है, सब लोगों में सबसे नीच है, और भगवान जो है पुरुषोत्तम है। पर कितना दुर्भाग्य है कि ये पुरुषोत्तम जो हमारे हृदय में ही है, जो हमारे हमेशा पास में ही है, उनकी सेवा करने के क्या करना चाहिए? भगवान हम सबसे कितना दूर है आपको पता है? कितने दूर है भगवान से हमसे? वो केवल कृष्णा इज ओनली वन थॉट अवे फ्रॉम अस, केवल एक विचार की दूरी है। अगर हम उनका विचार करते हैं तो हम उनका अस्तित्व महसूस कर सकते हैं, पर वो उपस्थित हो जाते हैं, वास्तव में उपस्थित है, पर वो हमारी चेतना में प्रकट हो जाते हैं। ओनली वन थॉट अवे फ्रॉम अस। तो भगवान की सेवा करने के लिए क्या करना है? उनका केवल चिंतन करना है, पर वह चिंतन जो पुरुषोत्तम हमारे सामने है, नाथे न पुरुषोत्तम जगतम एकाधिपे चेतसा सेवे स्वस्य पदस्य दातरी परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमं कतिपय ग्रामेशम अल्पार्थदम् सेवाय मृगाय महे अहो मूढ़ावरा का वयम्। कहते हैं कि अहो मूढ़ा, हे मूर्ख, क्या मूर्खता है कि जो भगवान हमारे हृदय में है उनकी सेवा करना इतने आसान, केवल चिंतन करना है, चेतसा चिंतन से सेवा करना है। और अगर उनकी इतना उनके बारे में विचार ही करें तो क्या वो हमें सेवा से प्रदान करने वाले हैं? स्वस्य पदस्य दातरी, वो अपने धाम में हमें लेकर जाकर उनके एक राजकुमार के समान हमें उनकी जो सारी आध्यात्मिक जगत है वह हमें प्रदान करने के लिए तैयार है। पर वह छोड़ के हम क्या करते हैं? इस भौतिक जगत के जो पुरुषाधम है उनकी सेवा के लिए भीख मांगते हैं। अभी यही जगह कैंपस सेंटर को ले आते हैं। कैंपस सेंटर में क्या करते हैं? वास्तव में बोलते हैं मैंने ये एग्जाम में ये मार्क मिले हैं, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये कॉम्पिटिशन जीते हैं, इसलिए कृपया आपकी सेवा मुझे नियोजित कीजिए।
तो किसी बहुत ही व्यक्ति को ऐसे बोलने से बेहतर है कि हम भगवान को बोले।
तो देखिए, और वो व्यक्ति क्या दे सकता है? ये बहुत ही व्यक्ति आएगा तो वो बोलते उस समय तो जागीरदार के पास जाएंगे हम, तो बोले कतिपय ग्रामेशम, वो कुछ थोड़े गांवों का राजा होगा। आजकल कंपनी का बॉस कोई गांव का राजा भी नहीं है, कुछ स्क्वायर फीट का राजा होता है वो
अपने ऑफिस का राजा होता है
फिर और वो क्या देता है? अल्प अर्थदम, अल्प थोड़ा सा पैसा देता है वो। कितना भी पैसा मिले वो कभी संतुष्ट, वो कोई पर्याप्त नहीं होता, उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। यू नो हु इज रिच एंड हु इज पुअर, कौन अमीर है कौन गरीब है? वन हु wants a lot is poor. अगर our poverty or our wealth depends not on how much we have but on how much we need. हमारा कितना है उससे हमारा अमीरत्व अमीरता या गरीबता निर्भर नहीं होती, हमें कितना चाहिए उससे। अगर हमारे पास बहुत बड़े बंगले भी है पर फिर भी लोभ है तो उससे क्या फायदा है? वास्तव में व्यक्ति गरीबी है। तो जो हम भगवान की भक्ति और जागृत करते हैं तो हृदय में संतुष्टि प्राप्त होती है। तो थोड़ा हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, संतुष्ट रहते हैं। और भगवान की भक्ति नहीं है तो बहुत भी हो तो और भी चाहिए, वो इच्छा कभी कम नहीं होने वाली है, जाने वाली नहीं है। इसीलिए अल्पार्थदम, बहुत थोड़ा सा पैसा देते उससे क्या फायदा होने वाला है? इसीलिए हमारे भौतिक निर्वाह के लिए जो भी करना है वो कर सकते हैं, पर हमारी इच्छा है हमें रखनी चाहिए कि हमें भगवान से संबंध जोड़ना है। भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो उससे क्या होगा? हमें स्वस्य पदस्य दातरी परे नारायण तिष्ठति, कि हमें भगवत धाम में जगह मिल जाएगी। न केवल भगवत धाम में हम मुक्ति पा जाएंगे पर इस जगत में ही जितनी हमारे भगवान की भक्ति जागृत होती है उतना हम यहाँ पे भी आनंद महसूस कर सकते हैं। और वही आनंद निस्वार्थ प्रेम का जो आनंद है वही जीवन का उद्देश्य है। और वही प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, प्रभुपाद जी सारे विश्वभर में प्रचार किए हैं और हमारे जीवन में भी भक्त भी आए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, वी हैव टू बी फॉर्चुनेट एंड इंटेलिजेंट, भाग्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए। तो भाग्यवान मतलब क्या, अगर भक्तों से हमारा संपर्क हो जाता है तो वो हमारा भाग्य है, पर भक्त जो हमें प्रदान कर रहे हैं वो स्वीकार यदि हम करते हैं तो हम बुद्धिमान है। तो दोनों चाहिए, भाग्य चाहिए और बुद्धि चाहिए। अगर हम भाग्यवान बुद्धिमान दोनों हो गए जरूर हम प्रगति कर सकते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति अभी भी कर सकते हैं इस जगत में। तो आप सबका बड़ा भाग्य है, महाराष्ट्र में अनेक कॉलेजेस है, तो बहुत से कॉलेजेस में बेस है, मैं सारे भारत में जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो कई बार बहुत से सिंसियर विद्यार्थी होते हैं पर उनके लिए कोई वो आध्यात्मिक जीवन अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, नेक जीवन, पर उनको सामग्री नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। तो आप सबको यहाँ पे बेस है, मतलब मैं वो रहते हैं तो आ रहे हैं रेगुलरली और फिर आपको संग दे रहे हैं, तो अगर आप इसका फायदा उठाओगे तो आप देखेंगे कि भगवान आपके हृदय में चमत्कार कर देंगे और आपका हृदय जो प्रसन्नता से, प्रसन्न चेतसा या बुद्धि पर्यावतिष्ठ थे, प्रसन्नता से उजागर हो जाएगा। समरिता हूं मैं क्लास की सारांश में, मैं देखा कैसे कि इस भौतिक जगत में हम किसी से भी संबंध जोड़ते हैं तो वो व्यक्ति भले ही सुंदर हो तो अच्छे हृदय का नहीं होता है, अच्छे हृदय का होगा तो भी बहुत मुश्किल होता है संबंध जोड़ना, और संबंध जोड़ लिया तो भी सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। तो भगवान है सुमुखम सुरुतम सुलभम सुखतम, और फिर वह बड़े शक्तिशाली भी है। तो ऐसे भगवान से संबंध जोड़ना ही जीवन का उद्देश्य, सब धर्मों का यही उद्देश्य है। तो हमने देखा कैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन ये हर एक कार्य में होता है, पर बाकी सब कार्यों का जो प्रयोजन होता है, फल होता है, वो या तो क्षणिक सुख होता है या वो क्षणिक सुख भी नहीं होता है। और फिर हम देखा कि धर्म के नाम पे भी लोग केवल इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और वो धर्म के द्वारा इंद्रिय विषयों से ही संबंध जोड़ रहे हैं, भगवान से संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। हम देखे कैसे विज्ञान हमें अपूर्ण चीज बताता है, वो चीजों को और अच्छा मान सकता है पर व्यक्तियों को और अच्छा मान नहीं सकता है। तो भगवान के बारे में जो संबंध जोड़ना है तो उसके लिए हमें भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए, और वह जो ज्ञान है वो वैदिक संस्कृति में विस्तारित रूप से दिया है और इसके विपरीत बाकी संस्कृति में उसमें ज्यादा ज्ञान है ही नहीं। और हमने देखा कि ऐसे तीन प्रकार के मार्ग होते हैं कि मेरा ही मार्ग असली मार्ग है, सब मार्ग सही है, पर ऐसा नहीं है, एक मार्ग है उस पर अलग अलग स्तर है, सर्वोच्च स्तर है प्रेम का, और प्रेम के स्तर पर हमें पहुंचने का मौका भगवान दे रहे हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे भगवान के संबंध जोड़ना है तो उनके महिमा उनकी और मधुरता दोनों जाननी चाहिए, और केवल वो जानकारी पर्याप्त नहीं है, जानकारी साथ हमें उनके भक्तों का संग होना चाहिए, भक्तों के संग के द्वारा हमें भक्तों में जो भक्ति है वो हमारे हृदय में प्रविष्ट होती है और उससे हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और हमने देखा एक गुण देखा भगवान का, कैसे कि भगवान किसी में दोष नहीं देखते, जो उनको दुख भी देते हैं उनका भी वो कल्याण चाहते हैं, न केवल कल्याण चाहते हैं उनके कल्याण की याचना दूसरों से करते हैं। तो ऐसे जो प्रेम पूर्ण भगवान है, न कथंचन कंचन जातु भजे, उनको त्याग करके हम बोले किसी और की सेवा क्यों करें, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की सेवा इतना आसान है, तो किसी भौतिकवादी पुरुषाधम व्यक्ति की सेवा करने में क्या हमें मिलने वाला है। तो हम एक बार श्लोक गाएंगे और फिर विराम लेंगे। सुमुखम सुरुदम सुलभम सुखदम मनुजम च सुखाय ममोघशरम अपहाय रघुद्वहम अन्यमहम कथंचन कंचन जातु भजे। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृपाल की, गौर भक्तवृंद की जय। थैंक यू।